ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरन्यस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितम् येन भूतले स्वयम् रूपकदामयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहम् श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपम् सागरजातम् सहगणा रघुनाथनितम् त्वम् सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजनसहितम् श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशकान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तु ते। तत्पकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रतिदिन का बात ही आज भी हम लोग श्रीमद् भागवतम से थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 श्लोक नंबर 18। कृपया आप लोग पीछे दोहराने का कष्ट कीजिए। जन्माद्या षट् इमे बावः दृष्ट्वा देहस्य न आत्मना फलानाम् इव वृक्षस्य कालेन ईश्वरमूर्तिना। जन्माद्या षडिमे बाव दृष्ट्वा देहस्य नात्मना फलानामिव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना। जन्माद्यषडी मे बाबा दृष्ट्वा देहशनात्मना फलानामीव वृक्षश्च कालेनेश्वरमूर्तिना जन्माद्यषडी मे बाबा दृष्ट्वा देहशनात्मना फलानामीव वृक्षश्च कालेनेश्वरमूर्तिना पड़ी षण्माद्यषडी मे बाबा दृष्ट्वा देहशनात्मन फलानामिव वृक्षश्च कालेनेश्वरमूर्तिना बाबा जन्माद्यषडी मे बाबा दृष्ट्वा देहशनात्मन फलानामिव वृक्षश्च कालेनेश्वरमूर्तिना जन्माद्यषडी मे बाबा दृष्ट्वा देहशनात्मनः फलानामिव वृक्षश्च कालेनेश्वरमूर्तिना
माताजी
जन्माद्यषडी मे बाबा दृष्ट्वा देहश्च आत्मना वृक्षश्च कालेनेश्वरमूर्तिना
और कोई शब्दार्थ
जन्माद्या जन्म से लेकर षड् छः जन्म अस्तित्व वृद्धि रूपांतर क्षय तथा अंत में मृत्यु इमे ये सब बावा शरीर की विभिन्न अवस्थाएं षड् देखे जाते हैं देहश्च शरीर के नाम नहीं आत्मना आत्मा के फलानाम फलों के ईवा सदृश वृक्षक्ष वृक्ष के कालेना कालक्रम से ईश्वरमूर्तिना जिसका स्वरूप रूपांतर करने या शारीरिक कार्यकलापों को वश में करने की क्षमता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम में छह प्रकार के परिवर्तन उत्पत्ति अस्तित्व वृद्धि रूपांतर क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। कृपया आप लोग पीछे दोहराने का कष्ट कीजिए। जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम में छह प्रकार के परिवर्तन
उत्पत्ति अस्तित्व वृद्धि रूपांतर क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। तात्पर्य इस प्रकार है। जय श्री श्री गौरनिताय भगवान की, श्री श्री राधाराजेश्वर ललित विशाखा जी की, श्री श्री सीताराम कृष्ण भक्त हनुमान जी की, श्रील प्रभुपाद की। तात्पर्य इस प्रकार है, आत्मा तथा भौतिक शरीर का अंतर समझने के लिए यहाँ श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मा शाश्वत है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भाविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो जन्म होता है न मृत्यु, न ही एक बार अस्तित्व में आने पर कभी इसका विनाश होता है। यह अजन्मा शाश्वत सदा विद्यमान रहने वाला न मरने वाला तथा सनातन है। इस शरीर का वध किए जाने पर इसका वध नहीं होता। आत्मा क्षय तथा परिवर्तन से मुक्त होने के कारण शाश्वत है। जबकि शरीर में क्षय तथा परिवर्तन होते रहते हैं, वृक्ष तथा उसके फल फूलों का उदाहरण अत्यंत सरल एवं स्पष्ट है। वृक्ष अनेक अनेक वर्ष तक खड़ा रहता है, किंतु ऋतु परिवर्तन के साथ इसके फूलों तथा फलों में छह परिवर्तन होते हैं। आधुनिक रासायनिक विधों का मूर्खतापूर्वक सिद्धांत की जीवन रासायनिक अंतक्रियाओं से उत्पन्न किया जा सकता है, सच नहीं माना जा सकता। मनुष्य के भीतर शरीर का जन्म शुक्र तथा रज के मिश्रण से होता है, किंतु जन्म का इतिहास तो यह है कि कभी कभी मैथुन के बाद रज तथा वीर्य के मिलने के बाद भी गर्भधारण नहीं होता। जब तक इस मिश्रण में आत्मा प्रवेश नहीं करता तब तक गर्भधारण की संभावना नहीं रहती, किंतु मिश्रण में आत्मा का आश्रय मिलते ही शरीर का जन्म होता है, अस्तित्व में आता है, वहाँ बढ़ता है, रूपांतरित होता है, क्षीण होता है और अंत में विनष्ट हो जाता है। वृक्ष में फल फूल तो ऋतुओं के अनुसार आते जाते रहते हैं, किंतु वृक्ष कड़ा रहता है। इसी प्रकार देहांतरशील जीव विविध शरीर स्वीकार करते हैं, जिनमें छह परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा स्थायी रूप से वैसे ही वैसा ही रहता है। आत्मा शाश्वत है तथा सदा विद्यमान रहता है, किंतु आत्मा द्वारा ग्रहित शरीर बदलते रहते हैं। आत्मा के दो प्रकार है, परमात्मा तथा जीवात्मा। जिस तरह जीवात्मा में विविध शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, उसी तरह परमात्मा में सृष्टि के विभिन्न कल्प घटित होते हैं। इस संबंध में मध्वाचार्य कहते हैं, षड विकार शरीरस्य न विष्णो तस्य च तदा दीनम शरीरम च ज्ञात्वा तन ममता त्यजेत। क्योंकि शरीर आत्मा का ब्रह्म रूप है, अतएव आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है, प्रत्युत शरीर आत्मा पर आश्रित है। जो इस सत्य को समझता है वह अपने शरीर के पोषण के प्रति अधिक चिंतित नहीं होता। शरीर को स्थायी रूप से या शाश्वत रूप से धारण किए रहने की कोई संभावना नहीं है। अंतोत्वा इमे देह नित्यो युक्त शरीरिना, यह भगवद गीता का कथन है। भौतिक शरीर अंतवंत है, किंतु शरीर के भीतर का आत्मा शाश्वत है। भगवान विष्णु तथा उनके अंश रूप सारे जीव शाश्वत है। नित्यानम चेतनानम चेतनानम, भगवान विष्णु मुख्य जीव है, जबकि व्यक्तिगत जीव भगवान विष्णु के अंश है। शरीर के सभी कोटियां विराट रूप से लेकर शूद्र चिट्ठी तक नाशवान है, किंतु परमात्मा तथा आत्मा गुण में एक से होने के कारण नित्य विद्यमान रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी और आगे व्याख्या हुई है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का अनुवाद में यहां पर समझा रहे कि जिस प्रकार वृक्षों के फलों तथा फूलों में कालक्रम में 6 प्रकार के परिवर्तन उत्पत्ति अस्तित्व वृद्धि रूपांतर क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसा परिवर्तन नहीं होते। ये भगवद गीता में भी आप लोग पढ़े हैं, तो आत्मा और शरीर के बारे में, तो यही प्रहलाद महाराज अपना सहपाठियों को, जो प्रहलाद महाराज नारद मुनि से सुने थे, वो ज्ञान अपना सहपाठियों को गुरुकुल में बता रहे कि जो आत्मा है वो शाश्वत है, उनका कभी मृत्यु नहीं होते, शरीर परिवर्तन होता है। 5 तत्वों से बनाया हुआ ये शरीर है, ये परिवर्तनशील है। 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे बनाया है ये शरीर। ये शाश्वत शरीर नहीं है, परिवर्तनशील है, लेकिन इसका अंदर जो आत्मा है बैठे है वो शाश्वत है, सनातन है, नित्य है, उसका कभी मृत्यु नहीं होते बता रहे। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होते क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। भगवान का अंश होने के नाते भगवान कभी मरते नहीं है कि नहीं? भगवान का मृत्यु नहीं है तो आत्मा का भी मृत्यु नहीं है। भगवान का अंश होने के नाते आत्मा का भी मृत्यु नहीं होता है, तो इसलिए यहां पर बता रहे आत्मा तथा भौतिक शरीर का अंतर समझने के लिए यहां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ना जायते मृयते वा कदाचिन नायं भूत्वा भवितावा न भूया अजो नित्या शाश्वतयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम शरीर मान के बैठते हैं इसलिए दुख होते हैं। हम इस शरीर को हम मानते हैं। शरीर और आत्मा अलग अलग है। जैसे हम लोग कभी रिक्शा में बैठते हैं तो हम पहुंच जाते हैं हमारा जो स्थान है, तो उसके बाद रिक्शा को छोड़ देते हैं, तो उसी प्रकार ये शरीर है, कभी मनुष्य का शरीर, कभी वृक्ष का शरीर, कभी पशु का शरीर मिलते रहते हैं। ये शाश्वत शरीर नहीं है, लेकिन हम इस शरीर में आने के बाद हम सोचते हैं कि ये शाश्वत होना चाहिए। कभी कुछ बीमार होगा तो करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं, फिर भी मृत्यु आ जाता है कि नहीं? ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है कभी ना कभी, शाश्वत शरीर नहीं है। तो यहां पर बता रहे कि हम जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं बहुत दुख होते हैं। दुख क्यों होते हैं? हम शरीर में आसक्ति है, हमको शरीर में आसक्ति है। अगर हम कोई गाड़ी में बैठा है तो उसका कुछ कोई दूसरा गाड़ी धक्का लगा दिया, डैमेज हो गया तो दूसरे का गाड़ी में, तो इतना दुख नहीं होता है। लेकिन हम कुछ गाड़ी खरीदा है तो
उसमें कुछ नुकसान होते तो ज्यादा दुख लगता है कि नहीं होता है ना। अरे हमारा गाड़ी का नुकसान हो गया, दुख लगता है। तो उसी प्रकार क्योंकि उसमें ज्यादा आसक्ति है, हमारा है, हम खरीदा है इसके लिए, तो ज्यादा दुख होता है। उसी प्रकार इस शरीर में हम बैठे हैं, अर्थात जीवात्मा, तो हम मान बैठते हैं कि ये शरीर मैं हूं, तो तभी कुछ बीमारी आते हैं, दुख आते हैं, नुकसान होते हैं, तो बहुत दुख लगता है। अगर उसको ये ज्ञान मिला है हम शरीर नहीं है आत्मा है, तो जो हमारा कर्म के अनुसार दुख सुख आते रहेंगे तो ज्यादा चिंतित नहीं होंगे। कष्ट तो होगा, दुख तो होगा, लेकिन वह सहन करने का शक्ति भी उसको मिलेगा हम सोचने से। अगर हम सोचेंगे यही शरीर हम है, फिर सहन करने का शक्ति नहीं मिलेगा, बल नहीं मिलेगा। इसलिए यहां पर बता रहे आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु, ना ही एक बार अस्तित्व में आने पर कभी इसका विनाश होता है, विनाश भी नहीं होता है उसका, हमेशा के लिए रहते हैं जीवात्मा। तो कोई बोल सकता है कि अरे जीवात्मा भगवान का अंश है, तो फिर इधर भगवान तो मुक्त रहते हैं, हम क्यों फंस जाते हैं? तो हम इसलिए फंस जाते हैं, हम अणु है, भगवान विभु है, भगवान सागर के जैसे, हम एक छोटा सागर का जो पानी है कारा रहते है कि नहीं, तो उसका जो एक बूंद पानी भी लाएंगे वो भी कारा रहेगा। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं सागर में हजारों टन नमक बना सकते हैं, एक बूंद पानी में कितना बना सकते हैं नमक? बूंद तो वही है, क्वांटिटी में कम है हम, इसलिए हम अणु है, भगवान विभु है, तो इसलिए भगवान नहीं पसते है। भगवान भी भौतिक शरीर सॉरी भौतिक दुनिया में आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए और दुष्टों को नाश करने के लिए, लेकिन वो मुक्त रहते हमेशा, इससे परे है। लेकिन हम लोग बद्ध आत्मा है, फंस जाते हैं, आकर्षित होते हैं भौतिक चीज में, जो भी अच्छा चीज देखते हैं, यार ये मेरे लिए होना चाहिए, ये मेरे लिए होना चाहिए, ये मेरा होना चाहिए, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हम बद्ध आत्मा है। तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान स्वतंत्रता है। तो इसलिए भगवान और आत्मा में अंतर है, और जीव और शरीर में भी अंतर है। जीवात्मा मरता नहीं है और शरीर का नाश होता है, पांच तत्वों से बनाया हुआ शरीर है, इसका नाश होता है, तो पांच तत्वों में मिल जाता है। अभी हम लोग मनुष्य का शरीर में है, अभी वो हमेशा रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, है कि नहीं? 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल तक हो सकते हैं, कलयुग में 100 साल है, लेकिन आजकल 50 साल में बहुत शरीर छोड़ना पड़ता है, बहुत छोड़ देते हैं, कुछ ना कुछ बीमारी आ जाती है, क्योंकि आजकल केमिकल का जो बनाया हुआ अन्न खाते हैं, केमिकल मतलब विष है, तो हम हर दिन थोड़ा थोड़ा विष लेते हैं, तो फिर पॉइजन हमारा शरीर में होता है, तो जल्दी बीमारी हो जाता है कि नहीं? तो जैसा आम है, अभी आगे आम का सीजन आएगा, वो केमिकल डाल के जल्दी पका देते हैं, क्योंकि मार्केट में बेचने के लिए, और पेड़ से जल्दी तोड़ देते हैं, थोड़ा कच्चा रहने का टाइम। शास्त्रों में बताया कोई फल जब पकने के लिए तैयार नहीं है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन हम लोग पहले से तोड़ देते हैं, फिर केमिकल डाल देते हैं, फिर ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, वो उसमें कीड़ा आ जाता है और सड़ जाता है। तो उसी प्रकार हमारा जो शरीर है तो हर दिन हम लोग विष लेते हैं तो जल्दी बीमारी आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो जल्दी मृत्यु भी आ जाते। पहले का लोग शुद्ध चीज खाते थे, है कि नहीं, बिना केमिकल। आजकल सब में केमिकल डालते हैं तो इसलिए जल्दी मृत्यु भी आ जाते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति ये ज्ञान को प्राप्त किया है उनको बीमारी भी हो मृत्यु भी आए ज्यादा विचलित नहीं होते हैं, नहीं तो विचलित बहुत दुख होते हैं, सब रोने लगते हैं। तो यहां पर बता रहे कि जैसा वृक्ष में फल होता है, पहला फूल निकलता है, उसके बाद छोटा सा फल कच्चा फल निकलता है, उसके बाद फिर बढ़ जाता है, उसके बाद फिर उसमें वो जो फल है बड़ा हो जाता है, फिर पक जाता है। तो उसी प्रकार ये शरीर है परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहते हैं। बच्चा छोटा सा बच्चा रहता है वो जन्म लेने का टाइम है कि नहीं, तो उसका बाद फिर बढ़ जाता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर मृत्यु आ जाता है। तो इसलिए यहां पर बता रहे जिस प्रकार वृक्ष के फलों तथा फूलों में कालक्रम में छह प्रकार के परिवर्तन उत्पत्ति अस्तित्व वृद्धि रूपांतर क्षय तथा अंत में मृत्यु होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में आत्मा को जो भौतिक शरीर प्राप्त होता है उसमें भी ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार ये भौतिक शरीर हमको मिला है इसमें भी यही परिवर्तन होते हैं, किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। लेकिन शरीर चेंज होने के बाद भी अगर दूसरा शरीर में ये आत्मा प्रवेश हुआ तो आत्मा दूसरा नहीं होता है, दूसरा शरीर में भी सेम आत्मा रहते हैं। अगर हमको दूसरा जैसा आप रिक्शा में बैठा है, आज रिक्शा में गया, कल मारुति वैन में गया, बाद में फिर ट्रेन में गया, प्लेन में गया, तो हम आदमी चेंज नहीं होते है कि नहीं, वही आदमी रहते, वही नाम रहते। तो उसी प्रकार हम कभी वृक्ष बन गया, पशु बन गया, आदमी बन गया, जानवर बन गया, तो कोई भी शरीर को प्राप्त किया है तो जो आत्मा है वो सेम रहते है, चेंज नहीं होते है, शरीर चेंज होता है हमारा कर्म का अनुसार। कर्म के अनुसार हमारा शरीर चेंज होते रहते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शेर का जैसा आप ऐसे व्यवहार करेंगे तो अगले जन्म में आपको शेर बनना पड़ेगा, कुत्ता का जैसा व्यवहार करेंगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा। तो इसलिए हमारा जो शरीर है शाश्वत नहीं है, हमारा कर्म के अनुसार शरीर मिलता है। इसलिए भगवद गीता में बताते हैं कर्म करना है, सही कर्म क्या है बुरा कर्म क्या है ये सब समझकर कर्म करना चाहिए, नहीं तो हम धोखा खाएंगे, हमारा मनमनी जो भी कर्म करेंगे धोखा खाएंगे। इसलिए आचार्य लोग गुरुजन वैष्णव लोग बताए हुआ रास्ते में चलना है तो वो लोग को ये पूर्ण रूप से ज्ञान है, तो इसलिए उनका पद चिन्ह पर चलना है, तभी हम सही जगह में पहुंचेंगे, सही सही रास्ता में रहेंगे, नहीं तो भटकते रहना पड़ेगा। 84 लाख योनि के बाद ये शरीर मिलता है तो फिर से 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए जो बुद्धिमान जीव है वो इसको स्वीकार करते हैं शास्त्र को, आचरण का वाणी को। तो कम बुद्धि है, अरे कुछ नहीं है, खाओ पियो मजा करो, बाद में कौन देखा मरने के बाद, ऐसा लोग बोलते हैं, है कि नहीं? जैसे आप लोग बुक डिस्क्रिप्शन किए होंगे मैराथन में दिसंबर में, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन पूछे होंगे, अरे गीता लेके क्या करेंगे, हाँ गीता हमको क्या अन्न देता है, क्या खाना देता है, क्या लोग ऐसा पूछते हैं, हाँ। तो गीता है भगवान का वाणी है कि नहीं? भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है, वही सही है। लेकिन लोग अज्ञानी लोग ऐसे बोलते हैं, ये क्या गीता क्या हमको अन्न देगा, हम काम करते हैं और खाते है पीते है, तो भगवान का नाम लेगा तो क्या हमको कोई लाके देगा अन्न, ऐसा लोग बोलते हैं, हाँ। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये जो हम लोग धरती में बैठा है, हवा ले रहे है, प्रकाश ले रहे है, पानी पी रहे है, वो कोई बनाया क्या, हाँ? ये तो भगवान ने बनाया, भगवान ने सृष्टि किया। तो इनको मालूम नहीं है कि अरे भगवान ने थोड़ी देते है, हाँ हम मेहनत करता हूं, हम कमाता हूं, हम खाता हूं, लेकिन उसका जो मूल जो वस्तु है उसको कौन सृष्टि किया? अगर हवा बंद करेंगे भगवान तो हम जी पाएंगे? हवा नहीं है तो नहीं जी सकते है, पानी नहीं है तो नहीं जी सकते है कि नहीं? लेकिन लोग सोचते हम सब किया है, ये हमारा है, हम सब कुछ है। तो ये कम बुद्धि वालों का काम है। तो बुद्धिमान व्यक्ति है, समझता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान जो बोले है वो सही है, उनका शरण में जाने से ही हम सही रास्ते में रहेंगे, सही जगह में पहुंचेंगे। हाँ जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य सेवा करना है, नित्य हर दिन। ऐसा नहीं कि एक दिन किया तो हम हर दिन क्यों करेंगे, हाँ कभी कभी बोलते हैं भक्त लोग भी, हाँ ये सेवा आप करो, नहीं नहीं हम आज करेंगे लेकिन दो दिन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। नित्यम नित्यम भागवतम सेवाया, और जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, नित्य दास है, दास का मतलब सेवक है कि नहीं? तो हम भगवान का सेवक है तो हर दिन भगवान का सेवा करना चाहिए, हर दिन भगवान का नाम जप करना चाहिए, हर दिन भागवतम श्रवण करना चाहिए, हर दिन भगवान का प्रचार करना चाहिए। एक दिन का सेवा नहीं है, हर दिन का। तो ऐसा व्यक्ति ऐसा जीव मुक्त हो जाता है, हाँ। तो इसलिए नहीं तो क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, फिर से मनुष्य का शरीर प्राप्त करना। अभी से कितना तकलीफ है, कितना महंगाई बढ़ गया, आगे जाके और बहुत तकलीफ है, भागवत में बताया कलयुग में जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जाएगा बहुत तकलीफ है। लेकिन भगवान का भक्त है इस परिस्थितियों में भी मुक्त है, कोई भी परिस्थिति में भगवान का भक्त मुक्त हो जाते, मुक्त रहते हैं, क्योंकि भगवान का भरोसे में रहते हो, खुद का भरोसे में नहीं है, भगवान का भरोसे में रहते हैं। लेकिन सब लोग नहीं समझते, इसलिए फिर एक दूसरे का साथ झगड़ा वैर भाव वो है ये है सब उत्पत्ति होते हैं। तो सब लोग मिलजुल के भगवान का सेवा करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, तो इसमें शक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति नहीं है तो फिर हम दुर्बल हो जाते हैं, भगवान का सेवन नहीं है दुर्बल हो जाते हैं। इसलिए हर जीव का कर्तव्य है भगवान का सेवा में लगे रहना, भगवान का नाम जप, भगवान का प्रचार, भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये हर जीव का कर्तव्य है, हर जीव करना चाहिए, तभी हम मुक्त हो जाएंगे। तो यही प्रहलाद महाराज बता रहे कि अपना सा पटयोग, हाँ ये आत्मा है सनातन है और शरीर है नाशवान है, परिवर्तनशील है। तो इससे मुक्त होने के लिए आप भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। असीम कृष्ण प्रभु। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? जय श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।